भाइयों और बहनों, कल तो मैंने आपसे कह दिया था कि मैं चरखा संघ की सभा थी उसमें गया था और औरतों से थोड़ी बात करना था। तो औरतों से जो बात की वो तो मैंने आपको सुना दिया था। आज भी वहीं जाना पड़ा और आज तालीमी संघ की मीटिंग थी, तो तालीम संघ की बात तो शायद मैं आज छोड़ दूंगा, लेकिन चरखा संघ की बात तो आपको करनी चाहिए। चरखा संघ तो क्या चीज है वो तो आप जानते हैं कि वो तो खद्दर का काम करते हैं, तो चरखा से तो शुरू होता है। तो चरखा से शुरू होता है उसका मन ये हुआ कि कपास, वो कपास को तुनाई करना या तो ढूंढती से कपास को साफ करना, पीछे उसमें पुनिया बनाना, पीछे काटना, पीछे बुनने की बात आ जाती है, तो उसको पांजनी करना, वो भी एक क्रिया रहती है, या तो नहीं करो तो नहीं। तो वो सब में तो मैं नहीं जाना चाहता हूँ। और उसका सबब तो ये कि हिंदुस्तान में जो करोड़ों लोग पड़े हैं वो अगर काम करें, और ये काम तो बहुत आसान है, सब दोही औरत भी कर सकती है और 6-7 वर्ष का लड़का वो भी कर सकता है, हम सिखाते हैं तालीमी संघ में, तो उनको सबको थोड़ा थोड़ा तो मिल ही जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा मिलता क्या है कि कपड़े का खर्च करीब करीब बच जाता है, कि कपड़े वो तो देहात में बन जाते हैं, और जब देहातों में कपड़े बन जाते हैं तब तो वो मुफ्तशाही हो गया ना कि हमने मेहनत की, क्या किया। और अगर हमारे आंगन में, हमारे देहात में, उसी देहात में अगर हम कपास भी बो देते हैं और कपास बनाए, तो करीब करीब सब खर्च बच गया, और बच तो दो गुना बच गया है, क्योंकि एक तो उसका पैसा देना नहीं पड़ता है और पीछे हम कुछ उद्यम करते हैं, और उद्यम भी ऐसा कि जिसमें कला पड़ी है, तो हम अपनी कला को भूलते नहीं हैं, उद्यम भी तो कर लेते हैं और पीछे आगे बढ़ते हैं। इस कारण मैंने तो कह दिया है कि हम अगर पागल न बन जाते तब तो क्या होता कि कपड़ों का घाटा तो हमारे यहाँ होना ही नहीं चाहिए, कोई भी मिल न रहे तो भी। लेकिन आज तो मिल का भी, हम मिल का ही जय गाते हैं, और ये करघा को, चरखा को, खद्दर को, गारा को करीब करीब भूल गए। हाँ, ये है कि हम कोई खादी की टोपी पहन लेते हैं, कोई कुर्ता पहन लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, क्योंकि उसका अभ्यास तो हो गया, उसके मार्फत से हमने लड़ाइयाँ की, वो सब किया। लेकिन वो चीज़ तो आज एक जिंदा हमारे जीवन में नहीं है, तो दुख की बात है कि इतना वर्षों से चरखा संघ ने काम किया, इतने करोड़ों रुपया गरीबों के घर में दे दिया, फिर भी हम ऐसे कैसे रह गए। तो उसके लिए तो कुछ सोचना तो चाहिए ना, तो वो सोचते थे कल, तो पीछे उसमें ये समझ लिया और बताया गया कि चरखा के मार्फत से हमारे क्या काम है, और चरखा किस चीज़ को बताने वाली चीज़ है, तो चरखा तो अहिंसा को बताने वाली चीज़ है। अगर सब लोग चरखामय बन जाते और सब देहात वो सचमुच समृद्ध बन जाते, तो जो हादसा आज हम देख रहे हैं और करुणामय है वो होने वाला नहीं था। ये था तो उसके वहाँ बहस चलती थी, और वो बताया गया कि किस तरह से चरखा के मार्फत से, मानी खादी के मार्फत से, हम ये कपड़ों का जो घाटा है वो तो आराम से पूरा कर सकते हैं, और करोड़ों रुपया हमारी देहातों में दाखिल कर देते हैं, तो करोड़ों नगद रुपया नहीं, लेकिन करोड़ों रुपया जो बाहर से आते थे कपड़े, या तो यहाँ मिलों का उसका दाम देना पड़ता है, उसके बदले में हम घर में बनाते हैं। तो एक बात उसमें हो जाती है कि वो जो खादी बनाते हैं, बुनते हैं घर में, तो कम से कम कपास का तो कुछ दाम पड़ेगा। तो कपास का दाम से भी जापान से जो कली को आता था उसकी कीमत कम, और यहाँ भी आज जो जिस तरह से कपास निकलता है और हमको दें तो उसमें भी करीब करीब ऐसा बन जाता है, लेकिन वो हिसाब सच्चा नहीं है। सच्चा क्यों नहीं है कि वो कपड़ा का जो वहाँ दाम होना चाहिए मिल में वो सब माना कि कोई सल्टनेट की मदद ही नहीं है तो बहुत दाम बढ़ जाएगा, लेकिन उसको तो सब मदद मिलती है, हमेशा मिलती आई है। उसके लिए जितना सुविधा पैदा करना चाहिए इतना किया है। क्यों किया है? क्योंकि हम राज चलाते हैं उसमें भी जो धनपति है उनका तो चलता है, जो हलपति है उनका नहीं चलता है। ये एक बड़ी दुख की बात है। धनपति का मुझको तो कोई द्वेष हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं धनपति के घर में पड़ा हूँ, लेकिन फिर भी धनपति का जो एक रवैया रहा है वो तो मैं लेता नहीं हूँ। वो तो धनपति तो मिल चलाते हैं तो मैं थोड़ा मिल में हिस्सा लेने वाला हूँ या तो मिल का मैं काम करने वाला हूँ, वो तो मैं नहीं कर सकता हूँ, उसको करना भी नहीं है। लेकिन उनके मार्फत से अगर मैं चरखा का काम निकाल सकता हूँ तो निकाल दूँ, वो तो मैं कर नहीं पाया हूँ, ऐसे पैमाने पर नहीं कर पाया हूँ कि जैसे मैं बता सकता हूँ। तो मैं बताता हूँ तो भी धनपति के घर में रहते हुए भी कि जो सुविधा धनपतियों के लिए धनपतियों ने ही अब करवा लिया है, पीछे वो तो गवर्नमेंट के मार्फत से ही करवा सकते हैं। तो गवर्नमेंट अगर चे वो कहते हैं हम कि गरीबों के लिए है तो वो तो अंग्लिश भी कहते थे गरीबों के लिए है, लेकिन काम तो कुछ गरीबों का नहीं होता है, इसीलिए आज भी कहें तो भी, लेकिन हकीकत में तो ऐसा नहीं होता है। ये हमको दीनता से कबूल कर लेना चाहिए। अब अगर ऐसा न हो तो पीछे सब कोई ऐसा कहेगा, जितने हमारे मेंबर हैं वो भी कहेगा कि नहीं हम तो देहात में जाकर भी वही कहने वाले हैं, सब कोई किसी को ये कहने वाले हैं। अरे सोशलिस्ट है वो, उसको भी मेरी चले तो उसको भी मैं उनके पास से भी यही आवाज़ निकलवा लूँगा कि वो जब सारा सारा सब सोशल बन जाए और वो भी यंत्रों के मार्फत से बड़े उद्यमों के मार्फत से तो मैं देख लूँगा तो वैसे मैं उसकी पूजा करूँगा। आज तो मैं कहता हूँ कि सच्चा सोशलिज्म, सच्ची लोक सेवा, लोगों को अगर हम ऊंचे चढ़ाना चाहते हैं सबके सबको, थोड़ों को नहीं, ये मजदूरों को ही नहीं लेकिन हलपतियों को, हल जो चलाने वाले हैं उसकी संख्या सबसे बड़ी है, तब हमारे लोगों को यही सिखाना है कि कम से कम तुम्हारे कपड़े हैं वो तो खादी का ही बना लो, वही पहनो और वो अपने घर में करो, उसमें कोई रुकावट नहीं डाल सकता है। कपास तो हमारे यहाँ बहुत हो जाती है। ये सब बातें इसी तरह से नहीं लेकिन इसका मतलब ये था, तो मैंने सोचा कि वो तो मैं आपको कह लूँगा, बता लूँगा कि क्या वो कर रहे हैं और वो संस्था क्या, जब से मैं आया हूँ तब से ये समझो कि ये सिलसिला चलता ही रहा है और चलता ही रहा है। कि आप कह सकते हैं कि तो भी तुमसे कुछ हो नहीं सका तो मैं कबूल करूँगा कि मुझसे तो इतना हो सका कि कई करोड़ रुपये वो गरीबों को घर में दे दिए, लेकिन हर एक देहात में चरखा गुंजन करे और हम सिवाय घड़ा के कुछ देखे ही नहीं वो तो नहीं बता सकता हूँ। और ये बता सकता तो पीछे हम आज दीन बन गए हैं, वो भी कहाँ रहने वाले थे। जैसे कि मैंने अभी सुन लिया कि हाँ कहते तो हैं कि अच्छा अभी तो कुछ गोलमाल तो नहीं है, लेकिन गोलमाल है हिंदू मुसलमान के बारे में, कि एक तरफ से मैं सुन रहा हूँ, मुझको पता नहीं है कि ऐसे भी व्याख्यान चलते हैं। वो मैं नाम धाम नहीं ले सकता हूँ अभी क्योंकि मेरे पास वो आ गया नहीं है पूरा, लेकिन ऐसी बात तो है कि वो कह रहे हैं कि इतने चंद मुसलमान पड़े हैं उसको भी रहने नहीं देने वाले, वो कहाँ रहने वाले हैं, हम तो बिल्कुल दिल्ली है वो हिंदू मय करेंगे, पीछे जो हमारे पास इतनी मस्जिदें पड़ी है उसका क्या करेंगे, वो तो दैव जानता है। मैं तो समझता हूँ कि ऐसे दीवाने हम बने नहीं कि जिससे ऐसा करें कि चलो सब मस्जिद है उसका भी कब्जा लेकर करें किसी का कि वहाँ हिंदू जाकर रहें। ऐसा अगर हों तो वैसे हिंदू धर्म बिक जाता है, ऐसा तो मैंने बहुत दफ़े कहा है। तो ये है, तो ये तो मैंने दिल्ली की बात आपको कर सुनाई, लेकिन अभी तो मैं अजमेर से बात आती है, तो मैं तो अजमेर काफ़ी गया हूँ, अजमेर काफ़ी जानता हूँ, वहाँ तो हिंदू भी काफ़ी पड़े ऐसे ही मुसलमान, और वहाँ तो बड़ी भारी दरगाह रहती है। वो दरगाह तो वो जो बड़े बुजुर्ग हो गए और ओलिया हो गए ऐसी, और उस दरगाह में तो लाखों हिंदू भी जाते हैं और वहाँ हिंदू जाकर उसकी मन्नत भी करते हैं ऐसे, और इसी तरह से सम्मान भी जाते हैं। तो वहाँ तो सब एक एक बन गए ऐसा है, धर्म से नहीं, लेकिन कर्म से तो कोई हिंदू और मुसलमानों के बीच में झगड़ा नहीं, हमेशा कभी नहीं हुआ है, ऐसा तो नहीं होता था, लेकिन ये अजमेर में बन गया आज तो थोड़ा सा ही हमको तो अखबारों में मिलता है, वही मैं जानता हूँ। वहाँ काफ़ी मुसलमान मर गए, क्यों मर गए वो भी एक करुणाजनक चीज़ है कि पहले तो वो डरे, डर के मारे वहाँ से भागे, भागे पीछे थोड़े रहे तो पीछे वो झगड़ा हो गया। और पीछे सुनता हूँ कि वो इर्द गिर्द की देहातों में भी होता है, अगर ये बात सही है तो मैं आपसे कहूँगा कि वो तो हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है। तो वो हम समझ तो लें, बाकी पूरी खबर मुझको मिल जाएगी तो मैं आपको ज़्यादा भी कहूँगा, लेकिन जो कुछ भी हम कर सकते हैं, कह सकते हैं, ईश्वर से मांग सकते हैं कि हमको सन्मति तो दें, और हम ऐसे बिगड़े नहीं, हम ऐसे न बिगड़े कि जिससे हम हिंदू धर्म का नाश करें। मुसलमानों का नाश करने के बहाने से हिंदू का भी नाश करें, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, ये तो कोई सच्ची बात, अच्छी बात नहीं हो सकती है। अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो सबको जिंदा रखे तो रह सकते हैं। इंसान में बनाई नहीं है कि हम एक को मारें और हम जिंदा रहें, तो दुनिया में बना नहीं है, वो माया पड़ी है तो हम मान लेते हैं। ऐसा न पाकिस्तान में वो बनने वाला है कि हिंदू सिख सबको मार डालें, वो मुसलमान को ही रखें, और यहाँ मुसलमानों को सबको मार डालें, यहाँ से निकाल दें, और कोई है तो उसको गुलाम करके रखें और बाकी हम जिंदा रहें। तो मैं ये कहूँगा कि वो जो एक विनाश का काम हम कर रहे हैं, वो तो संस्कृत में तो ये कहा है, या तो ये कहो ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि हो जाती है। तो हमारी बुद्धि तो विपरीत सा बन गई, वैसी बन गई है कि चलो मारो कूटो मुसलमानों को निकाल दो। बाकी तो उसमें तो बहुत सी बातें हैं, वो तो मैं नहीं आज सुना सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो ऐसा निश्चय किया है कि घड़ियाल निकाल के बेचना, और 15 मिनट से ज़्यादा देना ही नहीं है, तो इतना ही कह दूँगा।